ऐसे काहे भूल परे करे करावे मुकर पावे पेखत सुन सदा संग हरे काच विहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे होवन कौरा अनहोवन मीठा भिख्या में लपटाई जरे अंधकूप में परे ओ प्राणी पसम गुबार मोह बंद परे ओ नानक प्रभ होत दयारा गुर बेटे का डेवा फरे जू जननी सुत जन पालती राखे नदर न मजार अंतर बार मुख दे गिरास खिन खिन पोचार तू सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के हैं आने तन तन गुरु गुरु सतगुर पादा जिन हर उपदेश दे किए सियाने जैसी गगन फिरंती उड़ती कपड़े बागे वाली ओ राखे चीत बिछे बिच बचरे नित हृदय सार समाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखे जी नाली जैसी काती तीस बतीस है बिच राखे रसना मास कतगेरी कोई जानो मास काती के किछ हाथ है सब वसकत है हर केरी क्यों संत जना की नर निंदा करे हर राखे पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी के किछ हाथ है सब करे कराइया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के वस है कोई लाग न सके बिन हर का लाइया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो जन नानक जो अंति अवसर ले छाइया
सतगुरु नमः श्री गुरुदेव नमः दास दोनों हाथ जोड़ के संगत के चरणों च मुठा टेकते हुए अपने गुनाह की माफी लई अरदास बेनती करता है संगत की समर्था है बख्शन की कृपालता करो संगत बख्शे गुरु साहब भी बख्श देते हैं
ऐसे काहे भूल परे करे करावे मोकर पावे सीखत सुनत सदा संग हरी काच बिहाजन कंचन चाडन बैरी संगीत साजन त्याग खरी होवन कौरान होवन मीठा बिखिया में लपटाई जरी अंधकूप में पयो प्राणी मन गुबार मोह बंद परे के नानक प्रभ होत दयारा
काहेर भूल पर करे करावे मुकर पावे देखत सुनत सदा संग हरे ओ परमात्मा अकाल पुरख काल तो रहित ਕਦੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਜਾਲ, ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਨ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਨ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਉਦਮ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਦਉਪਯੋਗ ਦੇ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਖੂਬੀ ਹੈ? ਪੰਜ ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤ ਜੋ ਹਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੋਚ ਸਕੇ ਔਰ ਵਿਵੇਕਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਤੱਤਵ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਗੁਪਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਹੈ ਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਤਨੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਬਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ, ਭਜ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਭ। ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ,
ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤ ਦੇ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਆ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂੰਦ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਚਰ ਜੂਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਕੁੰਭਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਚਰ ਜੂਨ ਨੇ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਜੈ ਔਰ ਵਿਜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਦੇ ਦੁਆਰਪਾਲ ਸਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਚਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਔਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਤਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਠਾਨ ਲਿਆ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਚਰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਪਾਪ ਉਸਨੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜੋ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਯਾਨੀ ਮੋਕਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਗਿਆ ਜਾਂ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਚਰ ਜੂਨ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪਾਪ ਫੈਲਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਸ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਚਰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਰਾਵਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜੋ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮਤ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਲਮ ਜਾਂ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਸਬੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਾਣਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਉਲਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ 50 ਅਰਥ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਤੀਸਰਾ ਦੇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ, ਉਸਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਦ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਕੈਸਾ? ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੋਈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਫਿਜਿਕਸ ਦੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਹਾਂ, ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਦ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੈਸੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਸੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਈ, ਏਕ ਜਨ ਕਈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ, ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੋਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, कोई लफ्जा का फेर नहीं, जड़े मत धर्म असी बना करके बैठे हैं, सब बेड़िया ने इन्होंने फस करके असी इस बाणी के भाव न कभी समझ सकते ही नहीं। तो सब तो पहला फर्ज साडा यह बनता है कि जो भी असी सत्संग अकाल पुरख की आत्मा के नाल जुड़िए, शरण के जाइए, तो मत और धर्म दिया बेड़िया घर ही पहला खोल करके आईए। अगर असी संकीर्ण दृष्टिकोण लै करके बैठांगे इस सत्संग दे विच ते सानू इस दे भाव कदी भी समझ दे विच नहीं आणगे। यानी कि भांडा पुट्ठा होएगा तो उस दे विच कितनी भी मूसलाधार बारिश होवे, एक बूंद भी उस दे अंदर नहीं जा सकती। और अगर भांडा सीधा होएगा तो एक नहीं तो दो बरसातां दे विच अवश्य भांडा भर जाएगा। ठीक उसे तरीके दे नाल ए शरीर है, आत्मा इस दे अंदर मौजूद है। जब तक असी मत और धर्म दियां बेड़ियां दे विच बैठे हां, इस भांडे दे विच असी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि रूहानी ज्ञान की यह दौलत जिहड़ी कि लैण वास्ते सानू बुद्धि का तत्व दिता गया गुरु ग्रंथ साहब के जरिए, असी उस ज्ञान नू हासिल करना है, अज्ञानता के अंधकार नू दूर करना, उदे लई जरूरी गल है कि असी ये सारिया बेड़िया जड़िया खोल करके बैठीए, ता ही जा करके असी इस दे भाव नू समझ सकांगे। हुण ये विशेष मत दे जीव क्या करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब नू देह दे नाल तुलना करते हैं, ते देह दे नाल तुलना करना अपने आप ही उन्हां दी मूर्खता नू प्रगट कर देंदा है। इहदा देह दे नाल कोई संबंध नहीं है, ना देह दे नाल इसकी कोई तुलना है, इसकी एक सीमा है। इस वक्त जिहड़ी बाणी सचखंड तो आ रही है, ठीक यही ताकत लफ्जा दे राई शब्दा दे रूप दे विच गुरु नानक साहब और उन्हां दे अगो जोत गद्दी नशीना ने प्रगट कीती सी, ठीक उस तरीके दे नाल उन्हां दे भाव जड़े ने वो आप ही इस वक्त इन्हां भावां नू प्रगट कर रहे ने। यानी कि अगर इस बाणी नू अगर असी कहीए कि आत्मा दा कल्याण कर दे ते आत्मा नू रस्ता ते दे सकदी है, समझा सकदी है, पर कल्याण करन दे काबिल नहीं बना सकदी। काबिल बनन वास्ते इस जीवात्मा नू इस ज्ञान दे उपर पूरा उतरना पैंदा, चलना पैंदा, कमाई करनी पैंदी। अगर कमाई नहीं कीती ते मत्था टेकिया या ना टेकिया किसे काम दा नहीं। यानी कि सत्संग दे विच आए भाव नू सुनिया अगर ग्रहण करके अमल नहीं कीता ते ए सारे सत्संग अनंत काल तक तुसी करदे रहो, अनंत काल दे तक मनुखे जन्म दे चक्कर लगांदे रहो, गद्दियां नू सवेरे शाम सलामा करदे रहो। किसी दा कल्याण ना होया, ना हो रहा, ना अगे कोई उम्मीद रखे। कल्याण करन वाली जीवात्मा जड़ी इस अज्ञानता दे अंधकार नू दूर करके अमली जामा पहना देगी। होता कोई विरलिया लखा करोड़ा चो कोई एक ही निकलता है, पर इसका यह भाव नहीं है कि असी इस दे अधिकारी नहीं हाँ। मनुखे जन्म का भाव ही है कि कल्याण करन दा अधिकार इस आत्मा नू दे दिता गया। हुण इह आत्मा का अपना शौक है कि अगर इस ज्ञान नू प्राप्त करके अंधकार नू दूर करके सचमुच प्रैक्टिकल दे विच उस तत्व नू हासिल कर लवे। हुण प्रैक्टिकल किस तरीके दे लाउणा है, यह बाणी दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बिल्कुल स्पष्ट किया गया। तो अगला वचन जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया सी, गुरु खालसा जानियो प्रगट गुरा की दे, ते ये सारे भ्रम दूर कर देते सन कि गुरु ग्रंथ साहब जो है ये गुरु यानी कि सानू रस्ता देने वास्ते परमात्मा की ताकत रूप में प्रगट आत्मा प्रगट करता है। पर गुरु खालसा कौन है, पूर्ण जोत जगे घट में ते खालिस्तन खालिस जाने। यानी कि जिस जीवात्मा ने इस गुरु रूपी गुरु ग्रंथ साहब की दित्ती वाणी दे नाल जुड़ करके अपनी अज्ञानता नू सिर्फ दूर नहीं कर लेता, प्रैक्टिकल रूप दे विच लैबोरेटरी दे विच जा करके उस जोत नू हासिल कर लिया। यानी कि पूरे ग्रंथ साहब का निचोड़ की है, परमात्मा एक आवाज स्वरूप है, उस आवाज दे विच जोत आती है और जरा जोत दे नाल जुड़ जाता उसनू गुरु का खालसा किया गया है। तो गुरु कौन है, बिल्कुल स्पष्ट गल है कि गुरु किसी देह दे रूप दे विच नहीं उन्होंने किसी नू गुरु किया, गुरु अकाल पुरख परमात्मा नू किया है। और उसी की आत्मा की ताकत नू जो लफ्जा दे विच है गुरु का दर्जा दे के गुरु ग्रंथ साहब किया गया। तो गुरु का खालसा कौन है, जरा उस जोत नू प्राप्त कर चुका, किस जोत नू, उस अकाल पुरख की जोत नू। तो हुण विचार करके देख लो ऐसी जोत नू प्राप्त करन वाला खालसा इस जगत दे विच कौन है, तुहानूं लभिया भी नहीं जे लभना है, मौजूद है, इहदे विच कोई शक नहीं कि वह नहीं है। कभी भी यह जगत जड़ा है संता तो खाली नहीं हो सकता। इसी करके इस वचन दे विच जड़ी गल कही गई है कि राम संत में भेद किछ नहीं, कि दोनों ही इको ने, अभेद ने। यानी कि कोई आकार का सवाल नहीं है, जोत जोत दे विच मिल चुकी, आत्मा खुद बारह सूरज की एक ज्योत स्वरूप है। जो ये ज्योत उस अकाल पुरख की परम ज्योत दे विच मिलके लीन हो जाती है ताई उस जीवात्मा नू असी खालसे का दर्जा देने। खालसा कोई मत या धर्म नहीं, कोई देह का सवाल नहीं, कोई दाढ़ी का सवाल नहीं, कोई चोले का सवाल नहीं। दाढ़ी चोला तो कोई भी रख करके सिख कहला सकता, यानी कि एक विशेष ऐसा आकार जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिता सी उस वक्त इसकी भी बड़ी लोड़ सी। ते पर विचार करके देख ले जोत नू हासिल करके परम जोत दे विच मिलिया होया खालसा गुरु दा ऐसा कोई करोड़ा अरबा चो विरलिया चो विरला ही प्राप्त हुंदा। ते गुरु ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने जड़ी बाणी दिती है ये सोचण विचारण वाली है। अधूरी मत नू लै करके कदी भी असी उन्हां दे बचना दे भाव नू जान नहीं सकते। तो गुरु खालसा जाणियो प्रगट गुरा की दे। तो हुण इन्होंने गुरु किसनू कहा सा दोनों ही बचना दे विच गुरु अकाल पुरख परमात्मा नू कहा गया है। अकाल पुरख परमात्मा ने जिस घट दे विच यानी कि उसका गुण की है शब्द नाम कीर्तन अकथ कथा बाणी किन्ने ही लफ्जा दे नाल गुरु ग्रंथ साहब दे विच परमात्मा दे गुण नू व्यक्त किया गया। जिस जीवात्मा ने लबोरटरी केड़ी है यह शरीर लबोरटरी है। जो कुछ भी असी देखना है पढ़िया है सुनिया है विचार की है विवेकता दे नाल फैसला किया सारे चीजा का तत्व जरा इस शरीर दे विच सानू मिल सकता। पर कदों जदों असी लबोरटरी दे विच टीचर दे नाल जावांगे बेशक बगैर टीचर दे भी तुसी इस लबोरटरी दे विच जा सकते हो और खोज कर सकते हो तुहानू इस चीज की तत की प्राप्ति हो सकती है। पर यह जरूर विचार कर लेना कि क्या तुहाडे कोल इतना साधन है इतनी ताकत है। असी माया दे विच किस ढंग दे नाल फसे हुए हैं किस तरीके दे नाल असी नौ द्वारिया चो निकल के दसवें द्वार जिथे लबोरटरी मौजूद है उत्थे असी प्रवेश कर सकते हैं। योगियां ने ऋषि मुनिया ने हजारा साल तप किया यह नौ द्वारा चो निकलण वास्ते। साडी उम्र ही कितनी है 100 साल कलयुग विच किया जांदा है और होर कलयुग की उम्र ही सिर्फ 30 साल की है। अज विचार करके देख लो वाल साडे सफेद हो रहे हैं 10-15 साल के। कारण की है कि होर कलयुग की उम्र ही 30 साल की हैगी है। तो किया की जा सकता है ये सारे पंजों तत् जड़े ने उसे काल के विधन विधि के अनुसार ये नष्ट होने लग जाते हैं। यानी कि इन्हों की कार्य क्षमता जड़ी है काल के ब्रह्म के दिते गए नियम जड़े ने युग के अनुसार काम करते हैं। होर किसी के चलाया ना तो यह गल चल सकती है और ना ही धनवंतरिया के उपदेशों पढ़न के बाद असी इन वालों जो है काला कर सकते हैं। ऐसी ना कोई विधि आजाद हुई है ना इस वक्त है ना हो पाएगी। यानी कि यह सृष्टि चलाण वाली जी ताकत है उसनों पता है यह सृष्टि किस ढंग के नाल चलानी है। साड़ी मर्जी के नाल सृष्टि नहीं है चलनी। तो हम जब साड़ी उम्र ही इतनी छोटी जी 30-40 साल की सारी उम्र रह गई है तो विचार करके देख लो कदों असी अपनी घर गृहस्थी तो फारग होवांगे कदों असी यह जो जन्म सानू मिलिया ये 3 हिस्से निश्चित रहे सानू भुगतान देना पड़ेगा अवश्य देना पड़ेगा। बिना भुगतान दिते यह जीवात्मा इस पिंजरे चो बाहर निकल ही नहीं सकती। तन और मन का पिंजरा हर मुल्क दे विच हर जून दे नाल मौजूद है। तो हुण विचार करके देख लो इतनी छोटी जी उम्र लै करके कदों फारग होवांगे और नौ द्वारा चो निकल करके असी इस लबोरटरी दे विच उस तत् नू ज्योत नू हासिल करन दे काबिल बणांगे। तो सीधा जिहा मजबूरन स्पष्ट हो जांदा कि सानू एक बाहरी ताकत की लोड़ है। अगर असी सचमुच प्यासे हाँ तो असी प्यासे होने के बाद असी की देखते हैं कि जिते पानी मौजूद है खूह खुटिया है उत्थे जा करके प्यास बुझा लें। ये कोशिश कभी भी नहीं करते कि असी खूह खुटना शुरू कर दीए क्योंकि सानू पता है कि खूह खुटन दे विच बड़ी मेहनत लगेगी बड़ा समय लगेगा और ये ना उस तो पहले सानू चोला छड़ देना पे असी प्यास नू काबू नहीं कर सकते। ठीक उस तरीके दे नाल जिहड़ी जीवात्मा इस वक्त इस धरती के उपर प्यासी है ना उस परमात्मा नू मिलण दी उसनू मिलण दा शौक रखती है तो उसनू ये मत और धर्म दे नाल कोई मतलब नहीं ना इन्हां दाड़ियां दे नाल कोई मतलब है। यानी कि ना फलाम दे नाल मतलब ना वाहिगुरु दे नाल ना राधा स्वामी दे नाल ना राम दे नाल। इन्हां लफ्जा दे विचों निकल के वह आत्मा जड़ी वह जिज्ञासु आत्मा जड़ी है अपनी जिज्ञासा नू शांत करना चाहती है प्यास नू बुझाना चाहती है उसनू खूह की तलाश है। साध संगत जी खूह मौजूद हैं गुरु पिलाण वास्ते। यानी कि एक ऐसी आत्मा उस शब्द की ताकत नू लै करके इस जगत दे विच हर वक्त मौजूद रहती है कोई एक नहीं कई रहिंदियां ने पर यह विचार कर लेना चाहिए कि अगर साडा शोक परमात्मा नूं मिलण दा तो फिर असी यह सारे चक्रा चो निकल जावांगे। जदों असी स्कूल कालजा दे विच विद्या लैण वास्ते जांदे आ उत्थे असी कदी भी विचार नहीं करदे कि असी कोई सरदार है या हिंदू है या मुसलमान है ते असी किसी विशेष कोले शिक्षा हासिल करनी। साडा मकसद की है? असी विद्या नूं प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञानता के अधिकार नूं दूर करना, बस। पढ़ाण वाला कोई भी असी उहदे नाल कोई रिश्ता ते कर रहा नहीं, तो हुण विचार करके देख लो असी कर की रहे हां। अगर जीवात्मा मौजूद है उहदे तक पहुंच भी गए तो असी उहदे नाल रिश्ते जोड़ने शुरू कर दिंदे आ, उहनां दे घर दे मैंबर बनना पसंद करते हैं, उहनां दे चार सफेरे कजी झूरी करते हो। असी हासिल किस नूं करते हैं? निजी स्वार्थां की पूर्ति करन वास्ते कोई चिट्टे पास हासिल कर लैंदे आ, यह नहीं पता कि इन्हां दा दूसरा हिस्सा काला यानी कि भुगतान देना पेगा। तो विचार करके देख लो कि असी उस जगह कितने चलाक बन गए स्कूल पढ़न जदों गए, टीचर दे नाल कोई संबंध नहीं बनाया, सिर्फ उस दे हुक्म नूं मनिया जैसा निर्देश उसने दिता और असी उस दे निर्देश का पालन करते हुए पौड़ी दर पौड़ी चढ़ते क्लासा टपते हुए एक दिन डिग्री यानी कि ग्रैजुएट बन करके टीचर का रूप ही लै करके बाहर निकल आए। तो यह सी चलाकी सियाणत, वह चलाकी और सियाणत यह जी डेरिया के चलाई जा रही है, यह पतन का कारण है। ये किसी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, यह आत्मा सारिया भरम के बैठिया ने, कुछ निजी स्वार्था की पूर्ति खातर यह सोच रही हैं कि साडा कल्याण हो रहा, कोई सानू विशेष अहदे मान या ड्यूटियां मिली हैं तो असी खरे पता नहीं क्या कुछ हासिल कर लिया या कर लवेंगे। सात संगत जी, ये सारे भरम चो निकल जाओ, ये सारे असी अपने जन्म पक्के कर चुके हैं सूक्ष्म और कारण मुल्का दे विच, नरका दे विच भी और इस मुल्क दे विच भी, अभाव दी या राजे महाराजा की जिंदगी जीण वास्ते, यानी कि तन और मन का पिंजरा लै करके ये सारे साधन सानू मिलणगे जिहड़े चिट्टे पास कहे जांदे ने, यानी कि भुगतान देवांगे तो यह चिट्टे पास साडे काले बन जाणगे, यानी कि आत्मा कल्याण के काबिल नहीं बनेगी, उसनों मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, इन्हां मुल्कां दे विचों बंदी बन के अवश्य अवश्य जन्म लेगी। तो यह सारे भ्रम चो दूर हो जाना चाहिए। सानू चलाकी कैसी करनी चाहिए कि अगर असी उस जगह पर जाते हैं जिस जगह पूर्ण सतगुरु मौजूद ने तो उन्होंने उपदेश सुनना, उन्होंने दिता हुआ रस्ता लैना, उन्होंने दिता हुआ निशान लैना, उस निशान के नाल जुड़ जाना। जब तक असी उस निशान के नाल जुड़ांगे नहीं, यह निशान सब साधन मात्र ने, मत कोई जाने कि नाम देता अमृत छक लिया तो कोई अंदर घोल के पिलाता। सत्संग जी जिहड़े ग्रैजुएट डॉक्टर इंजीनियर बने ने उन्होंने पूछ के देख लो, या जिन्होंने उन्होंने पढ़ाया उन्होंने पूछ करके देख लो किसने तुहाडे अंदर इंजैक्शन लगाए या घोल के मुंह च कुछ पाता कि तुसीं डॉक्टर इंजीनियर बन गए, तो सारा विषय स्पष्ट हो जाएगा। ठीक उसे तरीके दे नाल इह भरम फैलाया जा रहा इस जगत दे विच, इह भरमां चों निकलना असीं बाणी दे पिछे चलना। इस वक्त जिहड़ी बाणी सानू इह सारे भरम दूर कर रही है, इह विरलिया चों विरले नूं वी सुणन दी क्षमता मिलदी है। सत्संग जी, मत कोई जाणे अहंकार जिथे आवे और समझे कि मैं इह सत्संग नूं सुणन दी शोभा वधा रहा, इह उस अकाल पुरख दी मर्जी दे बगैर कोई जी एक पग इस पौड़ी ते नहीं रख सकता, ना चढ़ के इत्थे तक पहुंच सकता। ते उसका दिता गया मान है, उसकी दिती गई क्षमता है कि वह कि रूह नू अपने नाल मिला लैन चाहता है। जदों वह मिला लेना चाहता है ना, उस 84 लाख जामिया दे विचों उत्तम जून यानी कि इंसान की जून दिंदा, और जदों उसकी नजर उसनू प्राप्त होंगी इंसान की जून मिलन के काबिल ही बन जावांगे। काबिलता का मजमून जड़ा है अकाल पुरख परमात्मा का अपना है, कोई चाह करके भी उसनू नहीं मिल सकता, पर इंसानी फर्ज की है, उपदेश की जी दिता जाता। सारे ग्रंथ साहब के अकाल पुरख की आत्मा क्या उपदेश करती है? गुरु रूप के कोई उपदेश करती है कि तुसी मेहनत करनी है, उदम करनी है, कमाई करनी है, किस तरीके दे नाल अंत करण दी शुद्धि, यानी कि अंतर दे विच जो मन का अति सूक्ष्म रूप है जिसनों अंत करण किया जाता है, चित भी किया जाता है, उस चित दे विच जितनिया भी इच्छा मौजूद ने इस जगत दियां वस्तु पदार्थ संबंधा दियां, उस जगह इको ही प्रबल इच्छा नूं रखना है, उत्थे किल पहले तो ही लगी है, इको ही तस्वीर टंगनी है अकाल पुरख परमात्मा की। को देह रूपी गुरु जो आते ने यह साधन दे रूप दे विच आते ने और अपना मत या धर्म चलाने वास्ते अपनियां तस्वीर वंडन वास्ते और इन्हां किलां ते तस्वीर लगवाण वास्ते ध्यान करवाण वास्ते नहीं आते, यह भी रूहां नूं फसाण का काम किया जा रहा। साध संगत जी, ध्यान करना तो उस एक अकाल पुरख परमात्मा का ध्यान करना, यह जितना भी जेता जगत संसार असी देख रहे हैं ना यह सारा उसी का रूप है, हर एक दे विच उसका रूप वसिया होया। अगर असी सचमुच उसके दीवाने हाँ, उसकी अपनी प्यास नूं बुझाना चाहते हैं, उसनूं मिलना चाहते हैं, तो अंत करण दे विच इक कोई प्रबल इच्छा उस अकाल पुरख परमात्मा दी, उसी दी तस्वीर नू लिया करके उस किल ते टांग दो, ये सारा मजमून जड़ा है अपने आप पूरा हो जाएगा। परमात्मा ने अपने आप मेल लड़ा है उसका मजमून ना, साडा मजमून सिर्फ कमाई करनी, सिर्फ अंतकरण की शुद्धि करनी, श्रद्धा प्रेम और यकीन दे नाल निष्कामता की भक्ति करनी, बिना कामता दे काम का त्याग, काम यानी लस्ट हवस, इस जगत की सारी लस्ट का त्याग करके एक कोई हवस यानी कि मोल लेना है इस चित्त नू, इस अहंकार नू, अहंकार नू उस परमात्मा के प्रति मोड़े बगैर कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। सो बाणी दे विच अज दे शब्द ही गुरु साहबान ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, कायरे भूल पर कि हे प्राणी तू इस जगत दे विच क्या करन वास्ते आया से, क्या लाभ लकराण वास्ते आया से, ते तू ते बिल्कुल ही भुल गया इस जगत दे विच विचार करके देख लो, अगर साडे बच्चे विदेशां दे विच जावण उत्थे जा करके काम दे विच लोभ दे विच या किसी होर ढंग दे नाल किसी होर चीज दे विच फस जावण ते विचार करके देख लो असीं उहनां नूं क्या कहिंदे आ वी तुसीं तां बिल्कुल ही अपना मुल्क छड्ड के भुल गए हो, जिस मकसद वास्ते तुहानूं ज्ञान लैण वास्ते पढ़न वास्ते विदेशां दे विच भेजिया गया सीगा अज तुसीं अपनी उस मंजिल नूं ही भुल चुके हो। ठीक उस तरीके दे नाल इस जीवात्मा नूं जदों इंसान दा जन्म इंसान दी जून दित्ती गई ते इस नूं परमात्मा नूं प्राप्त करन वास्ते ए इस दी मंजिल सी, अंत करन दे विच इक्को ए परमात्मा दी तस्वीर लगाण वास्ते इस नूं जन्म दित्ता गया सी, ए बुद्धि इस करके दित्ती गई थी कि सोच विचार इस जाल दे विचों तू किस ढंग दे नाल निकल सकदा है, किस तरह तू भुगतान देगा, किस तरह आत्मा दा कल्याण करेगा। पर जदों ए जीवात्मा इस बुद्धि नूं इस जगत दी वस्तु संबंध और पदार्थां नूं प्राप्त करन वास्ते अपनी दित्ती होई प्राण शक्ति जो पूंजी दित्ती सी मां बाप ने, मां बाप साडे कौन ने, अकाल पुरख परमात्मा, उन्होंने सानू यह पूंजी दित्ती सी स्वासा दी किस वास्ते, इस पूंजी का किसी नूं यकीन है किस वक्त खत्म हो जाएगी, कोई कह सकदा मैं किन्ने साल या किन्नियां घड़ियां जी सकदा, अंदर गए साह का यकीन नहीं बाहर आएगा या नहीं आएगा, ते इतना भी भरोसा इस जन्म का नहीं है, उसके बाद भी असी कितना वड्डा रिस्क लै लैंदे आ कि विआह शादियां दे उपर कितने असी खर्च कर देने आ, कैसी पूंजी, इस स्वासा दी पूंजी का पता ही कोई नहीं, उसके बाद स्त्री नूं भोग दा साधन समझ करके कितने स्वास असी ये पूंजी खत्म कर देने आ, कोई पता ही नहीं। यह सारा विषय है ब्रह्मचार्य यानी कि ब्रह्म दी चर्चा करनी, ब्रह्मचार्य का मतलब सिर्फ कामिंद्री नूं रोक लैणा नहीं है, ब्रह्मचर्चा का एक ही भाव है कि ब्रह्म दा जो है विचार करना किस तरीके दे नाल, 11 इंद्रियां दे नाल, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन, ये 11 दीआं 11 जदों उस परमात्मा दा चिंतन करदियां ने तद उसनूं कहा जांदा है कि यह ब्रह्मचारी हो गया, ब्रह्मचारक है। इसका विचार बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि असी त्याग करना है संसार का और चर्चा करनी है ब्रह्म की, ताई जा करके अंतकरण की शुद्धि होएगी तो सानू सोझी की प्राप्त होएगी, यह सोझी किसी नूं ऐवें नहीं मिल जाती, वैसे तो बुद्धि साढ़े भरपूर है यानी कि किसी की गर्दन कटनी हो, जेब कटना हो तो उसनू पता भी नहीं चलता कदों असी उसकी जेब कट ली, अगले नूं घर जाके पता चलता भाई अज मेरी जेब कटी गई है, यानी कि कितनी सियाणत है कितनी चलाकी है साडे अंदर कि दूसरे की जेब असी बाहर ही नजर मार के देख लैंदे आ भाई इसकी अंदर की जेब दे विच कुछ ना कुछ ताने या सोना मौजूद है, और ऐसे ढंग दे नाल कट लैंदे आ कि उसनू महसूस भी नहीं होण दिंदे। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि पंजवां आकाश तत्व जिहड़ा कितनी भरपूर मात्रा दे विच साडे अंदर मौजूद है, पर असी इसका प्रयोग कितने कर रहे हैं, लोगों के जेब कट्टण दे विच, गले कट्टण दे विच, यानी कि लोगों का हक मार करके ही इस ढंग के कर्म करके क्या साड़ी आत्मा का कल्याण हो सकता है। अपने आप सोचो, खूब विचार करो, ये विचार करन दा मजमून है, निंदा वड्याई का मजमून नहीं है और ना ही यह किसी की संगत का मजमून है, यह निजी विषय है आत्मा का परमात्मा के नाल मिल जाना, तो सोच समझ के विचार कर लेना चाहिए कि असी कर की रहे हैं, सिर्फ दुरुपयोग इस प्राण शक्ति का दिती गई इंद्रिया की क्षमता का सिर्फ अपने जन्म पक्के कर रहे हैं छोटे या वड्डे मुल्कां दे विच आ करके, अगर इस मुल्क दे विच भी आवांगे कई तरीके दे अभाव या कई तरीके दीआं सहूलतां यानी कि जैसा पाप या पुन कमावांगे वैसा ही असी जन्म लैके प्रगट हो जांगे, पर आत्मा दा कल्याण कदी भी नहीं होएगा, आत्मा हमेशा बंधी रहेगी, अगर उसनूं सोने की जंजीर पा दो तां वी उह बंधन दे विच है, लोहे की पा दो तां वी बंधन च है, यानी कि अभाव की जिंदगी है तो लोहे की जंजीर है, अगर राजे महाराजे की जिंदगी है तो सोने की जंजीर है, सूक्ष्म कारण लोगों के देव लोक दे भी चले गए, देवत्या की जूनी चले गए तो होर अभी कह दो जी सोने की जंजीर के हीरे मोती जड़े हुए हैं, पर है जंजीर आत्मा सचखंड नहीं जान देगी, अकाल पुरख को नहीं मिलन देगी, ये विधान है इस सृष्टि का नियम है, और अगर असी कारण लोगों के जाकर के इस नरकों के भी चले गए सूक्ष्म लोगों के कदों के कल्प उधार होएगा, ये कल्पना तो भी परे ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਰ ਭੁੱਲ ਪਰੇ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਮੁਕਰ ਪਾਵੇ ਪੇਕਥ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੜ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਕਤ ਸੁਨਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਖਦਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰੇਖ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਭੇਦ ਕਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਖਾਸੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਗਾ ਦੇ ਖੁਦਾਏ ਸੁੱਤੇ ਬਾਂਗ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਜਗਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਇਸ ਉੱਚੇ ਖਾਸ ਮਹਿਲ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਹ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਬਾਗ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਕੌਣ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 24-24 ਘੰਟੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਆਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਤਮ ਸਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਤਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਂਗ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੇਖਤ ਸੁਣਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖੀ ਬਾਜੂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਜੀਭੇ ਬਾਜੂ ਬੋਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਦਾ ਨਾ ਪੈਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਆਤਮਾ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੜੀਏ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਔਰ ਸ਼ਮਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਣੇਗੀ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨੌ ਦੁਆਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨੌ ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਾਮ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਲੋਭ ਦਾ ਮੋਹ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਵਸਤੂ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਗੁਲ ਮਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਨਾ ਕਾਬਿਲਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਲ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਲਓ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਅਪਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਦ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਲਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ ਅੰਗ ਮਾਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਉਪ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਤੱਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਚਿੱਤ ਹੈ चित दे विच भी बहुत सारिया वस्तुआं मौजूद ने, इहदी सारी सफाई होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके उपर अहंकार मौजूद है। अहंकार ही जो है यह असल चीज है, अहंकार नूं मोल लेना परमात्मा की तरफ। जब तक यह उस तरफ नहीं जाएगा, उसनों प्राप्त करने लिए नहीं कुर्बान होएगा, तद तक यह सारा मजमून सार्थक हो ही नहीं सकता। तो एक अंग दिता गया सानू सिमरन दा, जबान दे जरिए उस परमात्मा नूं याद करना, ताकि साडे अंतर दे विचों ओ बाकी दी लस्ट जड़ी है हवस खत्म हो जाए, जिन्हां दा असीं निरंतर चिंतन करते हैं। अगर असीं लफज दे जरिए परमात्मा नूं लगातार याद करना जावांगे ना, तो जरूरी गल है कि दूसरिआं नूं भुलना पेगा। क्यों? मन एक वक्त दे विच इक्को ही काम कर सकता है, इस दी सीमा है, और असीं इस दी सीमा दे विच लिया करके ही मोल्ड कर सकते हैं। होर कोई भी ढंग दा जरिया नहीं है, जड़ा कि असीं सोच रहे हैं कि विशेष जी झूरी करके चिट्टे पास लै करके सानू इह शब्द की ताकत मिल जाएगी। साध संगत जी, याद रखना, शब्द एक मर्यादा का नाम है, और यह मर्यादा सिर्फ मर्यादित भांडे दे विच ही प्रगट होंदी है। सियाणत और चलाकी दे नाल किसी नूं अज तक कुछ भी नहीं जे मिलिया। तो बिल्कुल स्पष्ट मजबूत हो जाता है कि पेकत सुनत, जिथे असीं इस नूं सुनना है उसके अंदरों आ रहे प्रकाश नूं असीं देखना भी है। इस शब्द नूं सुनना और देखना, इस नूं कहिंदे ने हरी दी संगत, और वह हरी दी संगत प्राप्त कीते बिना यह जड़ चेतन दे विच हर एक जर्रे दे विच वह मौजूद है। कभी भी इसका ज्ञान नहीं प्राप्त होएगा, असी अज्ञानता के अंधकार दे विच ही धक्के खांदे रहे। इसी करके गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु का दर्जा दिता है कि यह सारे भ्रम नूं दूर करता है, अज्ञानता के अंधकार नूं दूर करता है। तो इस वक्त भी यह गुरु रूपी गुरु ग्रंथ साहब भी सचखंड तो जिहड़ी ताकत आ रही है, इन्हां शब्दां दे भावां नूं प्रगट करके अज्ञानता के अंधकार को दूर करके इस गुरु के दर्जे सिद्ध कर देती है। अपने आप दे विच कोई होर मिसाल लैण की विचार करन की जरूरत ही नहीं है, पर इसकी सीमा भी है यह स्पष्ट जान लेना कि वाणी इस वक्त आ रही है, लहर आ रही है, पर यह लहर आत्मा सचखंड नहीं ले जा सकती, सिर्फ सानू समझा सकती है। ले जाण वाली जो शब्द की लहर है वह साढ़े सारिया के अंदर है, वह डेरे मंदिर गुरुद्वारे धक्के खाने की लोड़ ही कोई नहीं। यानी कि इस लैबोरेटरी के अंदर जाओ, नौ द्वारे खाली करके तुहानू यह लहर मिल जाएगी, जड़ी सचखंड ले जा करके अकाल पुरख परमात्मा दे नाल मिला करके सदा ले जन्म और मरण दे गेट तो कट दे।
काच बिहाजन कंचन साजन मेरी संगीत साजन त्याग करी।
काच बिहाजन कंचन साजन, कच नूं दे विच तू रचिया पिया। हुण कच किस नूं कहा? इस जगत दे जितने भी वस्तु पदार्थ और संबंध ने इस नूं कच गया। कंचन छाडन, कंचन कहिंदे ने सोने नूं, सोने नूं त्याग करके इस मुल्क दे विच अगर कोई कच दा व्यापारी बणे, कच दे विच खेडे ते की होएगा? उहदे हाथ पैर जिहड़े ने लहू लुहान हो जाणगे। ते विचार करके देख लो, गुरु नानक साहब कहिंदे ने तू सोने दा त्याग करके ते कच दे विच फसिया, यानी कि धियां पुत्तर जमीन जायदाद जड़ चेतन वस्तु संबंधां नूं प्राप्त करना यह कच दा व्यापार है। क्यों? इस दे हाथ पैर लहू लुहान हो जाते हैं, यानी कि इस जीवात्मा जन्म और मरण के गेड़ दे विच, यानी कि अज असि अगर बच्चे की लस्ट रखीए तो सानू सूर की जून दे विच जाना पेगा, अगर बच्चा साड़ा पैदा नहीं होया। उसे तरीके दे नाल काम की लस्ट है तो वेश्या की जून मौजूद है, गुस्से की लत है तो शेर की जून मौजूद है, मांस की लटक है तो विचार करके देख लो गिद्धां की जून बनाई किस वास्ते गई है, मांस के टुकड़िया के उपर ही सारी जिंदगी बिगा देंगे। जितनिया भी जूना ने सारी हवस को खत्म करने वास्ते बनाई गई ने। तो यह कच का व्यापार लहू लुहान का एको ही भाव है कि यह जीवात्मा जड़ी है जो जन्म और मरण के विच आती है, कोर नरक नूं तय करन दे बाद इस जीवात्मा नूं मनुखे जन्म दियां चंद सुख दियां घड़ियां प्राप्त हुंदियां ने, कोर नरक नूं प्राप्त करन दे बाद। ते इस कोर नरक तों निकलण दे बाद असीं फिर माया दे विच सो जांदे आं, और फिर तियां पुत्तर जमीन जायदाद नूं प्राप्त करके अपनी अस्थि मिटा के इस जीवात्मा नूं लहू लुहान बनाउण वास्ते इसके होर जन्म पक्के कर देंदे आं। ते इह कल्याण दा मार्ग नहीं है। ते कहिंदे ने तू सोने दा त्याग के, हुण सोना की सीगा? शब्द नूं सोना कर, हुण सोना ते जड़ है, पर शब्द जड़ा है, चेतन है, उसने जड़ चेतन सब नु आधार, शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द बया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाच है, नानक शब्द घटा घट आश है। यह सारे जड़ चेतन लोग नु आधार देने वाला शब्द है, बनाने वाला शब्द है, चलाने वाला शब्द है, खत्म करने वाला भी शब्द है। बाकी जितनिया भी ड्यूटियां ने ब्रह्म दिया ने, पर ब्रह्म दिया ने, यह सब एक ऐसिया जीवात्मा ने जिन्होंने अकाल पुरख परमात्मा की बंदगी करके उस अकाल पुरख के कोलो उस ड्यूटी नु हासिल करके इस सारे मुल्कां नु चलाने का काम कर रहे हैं। तो असं उन्होंने चक्कर ही थोड़ी फसना है, असं तो बाणी के पिछे चलना है कि तुसी सोने का त्याग क्यों कर रहे हो? सोने नु हासिल करो, कच का त्याग करो। बैरी संग तेरी संगत किस दे नाल आ गई है बैरियां दे नाल हुण बैरी कौन ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये इंद्रियां जड़ियां ने इस वक्त मन समेत बैरी बड़ियां होईयां ने क्यों ये संसार दे विच कच दे विच रचियां ने ते साडियां बैरी हो गईयां हे ते साजन हुण साजन कौन सीगा अंतर दे विच साजन ओ शब्द साजन कह रहे ने साजन मौजूद है उस दे नाल तू किरणा करदा नाम नूं जपणा नहीं चाहुंदा नाम नूं प्राप्त करना नहीं चाहुंदा अकाल पुरख परमात्मा तक पहुंचण दा तेरा कोई शौक ही नहीं हैगा त्याग खरे त्याग खर कहने ने मत नु बुद्धि कहने ने तेरी मत जड़ी है मारी गई है बुद्धि का तू त्याग कर देता है वैसे तो बुद्धि इतनी चेतन है चलाक है कि लोगों का गला भी असं कट लें उन्होंने घर जाके पता चलता भी मैं 4 इंच का घरों निकलिया अज 2 इंच का वापस आया वा विचार करके देख लो क्यों क्योंकि साड़ी चलाकी ने उसकी गर्दन छोटी कर दी जेब हल्का कर दिता 200 से 2200 बन गए और किस तरीके बन गए भाई जेब कट्टी जाएगी विचार करके देखो ये सारिया का साथ संग जी भुगतान देना पड़ा मत कोई जाने कोई वो परमात्मा सुता पिया एक तीसरी अख हर जर्रे दे उपर हर चेतन जड़ दे उपर नजर रख करके बैठी है कोई माइका लाल बच नहीं जा सकता सारिया सियाणता सारे चिट्टे पार चढ़े ने झाड़ू ला के बाहर निकाल दिते जाणगे हुण विचार करके देख लो जैसी किरत की है जैसी कमाई की है वैसा ही भुगतान मिलेगा कोई सलाम जड़िए किसी भी रस्ते चा करके रुकावट पेश नहीं करेगी बल्कि वह सलाम खुद ही जा ले जा करके उन्होंने नरकों के कैद करवा देगी भाई तू पहले इतने भुगतान करके अपनी अवस्था खत्म कर ला उस तो बाद असं तेन अपनी सलाम का जवाब देंगे इस करके गुरु साहब ने कोई भ्रम रखे ही नहीं है यह सारे भ्रमों चो निकलो कि असं अपनी विवेकता त्याग कर चुके हैं विवेकता किसी कि मनुखे जन्म के आ करके संसार का त्याग करके असं ब्रह्म की चर्चा करते इसी विवेकता यानी कि सोने प्राप्त करना पर असी सोने का त्याग करके बैरिया का संग करके कच का व्यापार कर रहे हैं यह साड़ी मूर्खता है होवन कोड़ा अनहोवन मीठा होवन होवन नु कोड़ा कह रहे हैं होवन की है यानी कि परमात्मा होवन है जो कुछ भी नहीं सी तां भी परमात्मा सी इस वक्त भी हर एक दे विच परमात्मा जदों ये सारी चीज परले महापरले खत्म हो जाएगी उस वक्त भी अशिष्ट शेष की रह जाएगा यानी कि परमात्मा परमात्मा नु शेष कह करके वेदा दे विच प्रचारित किया गया यानी कि झूठ झूठ किस नु कहंदे ने जो बच जाए तो झूठ का दूसरा अर्थ की हैगा शेष रह जाना तो वेद दे विच आधार है उस परमात्मा नु यानी कि शेष कह करके पुकारिया गया कि जो बच जाता जो पहले भी सीगा हुण भी है और जदों ये रचना खत्म हो जाएगी उस वक्त भी जो शेष बचेगा वह अकाल पुरख परमात्मा ही है यानी कि रहने वाले नु असी जो है झूठा कहंदे आ उहदे विच साडा ध्यान नहीं लगता अनहोवन मीठा अनहोवन कहंदे ने इह जड़ां विच जेड़ा जगत संसार नजर आ रहा है यह अनहोवन है यह संसार अपने मूल दे विच जाल हर पल नष्ट हो रहा है एक पल पहले जो कुछ संसार सी अगले पल ओ नहीं रहिंदा उहदा स्वरूप जिहड़ा बदल जांदा पर इतने सूक्ष्म रूप दे विच बदलाव हो रहा है कि सानू इन्हां अखां दे नाल नजर नहीं आंदा पर जिहड़ी जीवात्मा इस लैबोरेटरी दे विच जा करके एक वारी इस प्रकृति नूं कम करदे देख लैंदी है ना सात संगत जी फिर वह इस प्रकृति दे चक्कर दे विच नहीं आंदी उसनु पता चल जाता है कि मेरी धातु कुछ हो रहा है और यह प्रकृति की धातु हो रहा है यानी कि एक कच है एक सोना है वह सोना कच के कभी मिल ही नहीं सकता जितने मर्जी तुसी इस लिक्विड करके उबालते रहो पर जो भी असं गर्म करांगे सोने की धातु बिल्कुल अलग हो जाएगी कच के कदे नहीं रलेगी उसे तरीके दे नाल आत्मा अपने आप में इस वक्त शरीर समझ करके बैठी है यह संबंध वस्तु पदार्थों को प्राप्त करने लिए अपनी अस्थि कुर्बान कर रही है इसका इस भुगतान देना पैदा है यही इसका भरम है यही इसका सुत्तापन है इस माया दे ते गुरु नानक साहब बिल्कुल स्पष्ट कर रहे विख्या में लिपटाए जर होवन नु तुसी जो है कूड़ा कहंदे हो अनहोवन नु मिठा कहंदे हो उसदे नाल चिपटे होए हो ते कहंदे ने विखिया में विख कहंदे ने जहर नु इह जहर दे नाल लिपटी इह जीवात्मा जड़ी है जल के खत्म हो जाती है आत्मा की क्या डेफिनेशन है इसनु कोई मार नहीं सकता कोई पैदा नहीं कर सकता कोई जला नहीं सकता ना कोई इसनु खत्म कर सकता तो इसका तुकां दा भाव की है इस वचन का एको ही भाव है कि आत्मा नु इसका भुगतान देने वास्ते जन्म और मरण के गेड़ दे विच जाना पैंदा ये कहंदे ने विखिया में लिपटाई जर अंध कूप में परयो प्राणी अंधे खूह दे विच तू इस वक्त फसया होया भरम गुबार भरम नू हासिल करके तू गुबार होया वे भरम की है वस्तु पदार्थ और संबंधा नू हासिल कर लेना बहुत सारे वड्डे ताकत नू हासिल कर लेना इस मुल्क दी ते जीव नू भरम हो जांदा और फुल के कुप्पा हो जांदा मोह बंद पड़े कहंदे ने इह ते मोह दीआं बेड़ियां ने जिस दे विच तू इस मुल्क दे विच कैदी है और इन्हां दा भुगतान करन वास्ते तैनू फिर कैदी बन के आना पेगा तो इस अंधकूप अंधे खूह दे विच तू छुटिया गया अंधे खूह दा भाव है कि उहदे विचों निकल नहीं सकता जीव उहनूं कोई रस्ता नजर नहीं आता
चार सफेरे अंधकार है और गहराई इतनी है कि उसनु उपर दा आकाश नजर नहीं आता। उसे ढंग दे नाल इस संसार रूपी जगत दे विच जितने भी वस्तु पदार्थ और संबंध ने इन्हों का इतना अंधकार है, उसने जीवात्मा इतना अंधकार खूह दे विच सुट दिता है कि इस जीवात्मा पता ही नहीं कि मैं चेतन स्वरूप 12 सूरज की ताकत ला करके मौजूद हाँ और जदों चाहवा पार ब्रह्म तक जा सकती हाँ बिना किसी की मदद के। इतनी ताकत लैण के बाद भी यह अंधे खूह दे विच बेड़ियां पा करके कह दे, उसका भी कोई कारण है। जब तक अकाल पुरख परमात्मा की मेहर कै नानक पब होत दियारा, अगर अकाल पुरख परमात्मा की दया होवे ता ही जाके गुर भेटे कढ़े बाह फड़े, यानी कि गुरु दे मिलन का मजबून गुरु रूपी साधन कदों मिलता। मत कोई जाने कि असी गुरुआं नूं नहीं मनते, नहीं मनते तो भाई ना मनो की फर्क पै जाता, यानी कि गुरु नाल भेट ही उदों होएगी जदों असी परमात्मा नूं मिलन का शौक रखांगे। और अगर असी अंतर दे विच निर्मल होवांगे, परमात्मा नूं सचमुच हासिल करना चाहांगे, उसकी तस्वीर सचमुच असी अपने चित्त दे विच टंगणी चाहवांगे ना, तो गुरु दे नाल अवश्य मेल करवा देगा। यह मेल करवाण दा काम अकाल पुरख परमात्मा दा, यह जीव कदी चाह करके भी पूरन सतगुरु दे कोल उहदी शरण नूं नहीं ला सकदा। गुरु भेटे कढ़े बाह फड़े, और उसी जीवात्मा दी बाह पकड़ के वह गुरु यानी कि वह जीवात्मा जड़ी इस मुल्क दे विच मौजूद है उसकी बाह पकड़ के इस पाप सागर तो पार कर देंदी है। तो यह विषय की है, एक शिष्य और एक गुरु दे विच दा मजमून है जिसनू गुरु ग्रंथ साहब दे विच अकाल पुरख की आत्मा नू लफ्जा दे जरिए प्रगट किया है। इस तो अलावा होर कुछ भी नहीं है, यानी कि एक शिष्य और एक गुरु दे मजमून नू स्पष्ट किया गया। तो मत कोई जाने कि यह लखा ही शिष्य इकट्ठे हो गए ने तो यह सारा कल्याण का विषय है, तो विचार करके देख लो पता नहीं किहड़े युग काल दे विच घड़ी आनी है जदों जा करके असी अपने आप नू इस काबिल बना पावांगे। पर इसका यह मतलब भी नहीं है कि सानू यह जन्म मिलिया तो असी इसनू व्यर्था गवा दईए। साडा इको ही मकसद है कि इन्हां सारियां गल्लां दे उपर इतना सोच विचार करन दी जरूरत नहीं है जितना कि असी अपने आप नू फसाण दे विच कर लैंदे आ, कि साडा इको ही मकसद है कि रस्ते नू लैणा और रस्ते दे उपर चल पैणा। चल के बाद मंजिल से कदों पहुंचांगे, पहुंचांगे नहीं पहुंचांगे, यह साडा विषय ही नहीं है, यह परमात्मा का विषय है। यह परमात्मा ने खुद फैसला करना है, यानी कि अकाल पुरख परमात्मा ने शब्द की मर्यादा सिर्फ अपने कोल रखी है। साध संगत जी, यह भी हुक्म आ रहा है कि भरम चो निकल जाओ कि किसी होर जगह तो तुहानू यह दात प्राप्त हो जाएगी, किसी कोलो नहीं मिलेगी, जितने मर्जी चक्कर कट लो पूरन सतगुरां दे या किसी दे भी। यह अकाल पुरख परमात्मा ने इसकी मर्यादा अपने कोल रखी है और जिस दे उपर वह संतुष्ट होंदा ना, कह नानक जिसनू आप तुथा तीन अमृत गुरते पाया, जिस दे उपर अकाल पुरख की संतुष्टि होएगी ना उसी नू शब्द रूपी दौलत या नाम प्राप्त होंदा, यानी कि कोई लफ्जी नाम की गल नहीं हो रही, यह सच्चे उस नाम की आवाज और आ रहे प्रकाश की गल हो रही है कि यह प्राप्ति उसनू होंदा जिसनू अकाल पुरख की संतुष्टि होए। और वह उसनू क्या खुद नहीं दे सकता, क्या किसी आकार के जरिए या लफज के जरिए या किसी देह के जरिए देगा, तो यह भी भरम है, इस भरम के विचों भी निकल जाओ। तो बाकी का मजबून की है कि साड़ी ताकत जड़ी असी गवा चुके हैं, तो जितनी जल्दी हो सके खुट्टे हुए खूह यानी कि जीवा आत्मा मौजूद है बाहरी ताकत ला करके शब्द की उसके कोल हुक्म लीए रस्ता लीए और उसके उपर कुर्बान होकर के उस रस्ते के उपर चल करके असी शब्द नू मिलन दे काबिल बन जाइए। बात देण वाली ताकत अकाल पुरख परमात्मा है। इस जगह पे भी जीव जूरी करके या इस तरीके दीआं दूसरियां सेवा जिहड़ियां चलदियां ने इस ढंग दे नाल किसी नू भी इह दौलत की प्राप्ति नहीं हो जाती। दौलत की प्राप्ति अंतकरण की शुद्धि और परमात्मा नू मिलन की एक प्रबल इच्छा निष्कामता की श्रद्धा प्रेम और यकीन दे नाल भगती करके ही उस शब्द नू प्राप्त किया जा सकता है जो इस आत्मा का कल्याण करता है। आत्मा नू कल्याण ना करन वाले शब्द और नाम अमृत इस जगह दे विच बड़े प्रचार किए जा रहे, पर इस आत्मा का अज तक कल्याण नहीं होया। साध संगत जी विचार करके देख लो, क्या मरण का इंतजार कर रहे हैं कि मरण के बाद ये सारे शब्द प्रगट हो गए और अमृत कुंड फटणगे और जीवात्मा का कल्याण कर देंगे? यह सारा सोचण समझण विचार करने वाला मजबूर है। जिस तरह एक मां अपने बच्चे नू जम करके दिन राती उसका ख्याल करती है, उसका ख्याल किदे विच हुंदा? अपने बच्चे की संभाल दे विच, बच्चे नू पालन वास्ते। अंदर बाहर आंदे जांदे हो, पल पल उसके मुंह दे विच कुछ ना कुछ भोजन पाती रहती है, क्यों? क्योंकि उसकी हवा शायद बच्चे की परवरिश करनी है अच्छे ढंग दे नाल।
क्यों सतगुर गुरु सिखिया किता
उसे तरीके दे नाल सतगुरु जो है जीवात्मा जेड़े सतपुरुष नूं प्राप्त कर चुकी है उसनू सतगुरु कहा गया गुरसिख राखता हुण गुरसिख नूं समझना गुरु कोल है गुरु है अकाल पुरख और अकाल पुरख नूं प्राप्त करन वाला उसकी सिक्ख्या ते चलन वाला अपने नूं उसकी सिक्ख्या ते कुरबान करन वाला सिख कलाण दे काबिला यानी कि दाड़ी वाले सिख की इत्थे गल ही नहीं हो रही जिस वक्त बाणी उचारी गई उस वक्त दाड़ी का कोई ऐसा मजमून नहीं सीगा यानी कि कोई भी गुरु नानक साहब कोल आ करके रस्ते नूं लै सकदा सी और उह रस्ता देंदे सी सतनाम का जाप देंदे सन और चरण अमृत दे करके उन्हें रस्ता दिखा करके अपनी निजी जिंदगी दे भी कुर्बान होने वास्ते भेज दिता जाता सी और जदों वह जीवात्मा कुर्बान होंदी सी ते संभाल किसने करनी थी शब्द ने अकाल पुरख ने सो अकाल पुरख गुरु है गुरसिख की संभाल सतगुरु करता है किस ढंग दे नाल करता है प्रीत प्यार कि हर देना हरी दे नाल प्रेम ना, प्रेम की डोर नू जोड़ देना यह सतगुरु का काम है साधन के रूप दे विच इस जगत दे विच मौजूद है पर किस नू जड़ी जीवात्मा अकाल पुरख नू मिलना चाहती है उसका सिख बन चुकी है उसी की संभाल करने वास्ते इस जगत दे विच सतगुरु जो ने प्रगट होंदे ने और उस जीवात्मा नू प्रेम दे नाल उस परमात्मा दे नाल जोड़ी रखते ने यह है सतगुरु का काम कहंदे ने हे मेरे राम असी अधूरे हां अपूर्ण हां मूर्ख हां पर है तेरे बच्चे हां जिस तरीके दे नाल मां अपने मूर्ख बच्चों की भी संभाल करती है उसे तरीके दे नाल ए शरण की गल की गई है इस बचन दे विच कि साडा फर्ज बनता है कि असी अकाल पुरख दे अगे दीन और निमाणे बन करके सदा उसकी शरण दे विच रहिए हुण कहिंदे ने पहले तो उस अकाल पुरख का धनवाद है जिसने इस जगत दे विच गुरु दे नाल मिलाता फिर इस गुरु का भी धनवाद करते हैं कि जिसने गुरसिख नूं यानी कि उस सिख नूं जिहड़ा अकाल पुरख नूं मिलना चाहता सी बड़े प्रेम प्यार दे नाल उस दे नाल जोड़ करके उस नूं मिलण दे काबिल बनाता यानी कि उपदेश का भाव है कि सिर्फ लफ्जी उपदेश ये आत्मा नहीं देंदी शब्द की ताकत इस दे पास मौजूद होंदी है और जदों वह देखदा है भी कि मौखिक रूप दे विच जीवात्मा सचमुच उस परमात्मा नूं मिलण दे समर्था नूं हासिल करना चाहती है उस वक्त अपनी ताकत समर्था दे करके उस जीवात्मा नूं उस दे नाल मिल जांदी है यह है पूर्ण उपदेश तो ऐसा उपदेश करके जो जीवात्मा उस शब्द दे नाल जुड़ जाती है वह परम चेतन का अंश हो जाती है उसी नूं कह रहे हैं कि वह सियाणी चतुर हो जाती है पर चतुर कदों बनती है जदों वह उस परमात्मा दे अगे मूर्ख बनी रहती है अगर उसके अगे वह सियाणत करती है जैसे कि डेरिया मंदिर च असीं करते हैं ऐसी सियाणत जड़ी है कदे भी सानूं चतुर बनन दे काबिल बनन ही नहीं देगी
जैसे गगन फिरंती कपड़े भागे वाली
इस जगत दे विच एक चिड़ी का भी मिसाल दे रहे जिस तरह मां का उदाहरण दिता है बच्चे दे नाल उसे तरीके दे नाल एक चिट्टे परां वाली ऐसी चिड़िया है जिहड़ी कि बर्फ दे इलाके दे विच रहिंदी और अपने बच्चे देण दे बाद वह मैदानी इलाकियां दे विच बड़ी दूर चली जाती है पर उसका ध्यान कित है उसका ख्याल कित है उसका ख्याल नित सदा अपने उन्हें बच्चा छोटे छोटे बच्चों के विच है और उसका ध्यान ही जड़ा है उन्हें बच्चों की परवरिश करता है उसे तरीके दे नाल गुरु रूपी जो सतगुरु इस जगत दे विच मौजूद है वह गुरसिख नूं इस ढंग दे नाल प्रीत करनी प्रेम की डोर दे नाल अकाल पुरख दे नाल जोड़ देंदा है कि जदों यह जीवात्मा पल पल उस निशान दे नाल जुड़ती उस अकाल पुरख परमात्मा नूं याद करती है ना उस वक्त वह अकाल पुरख परमात्मा भी उस जीवात्मा नूं सदा अपने जी दे नाल लगा करके रखदा है सतसंग जी जिहड़े इस रस्ते ते चलदे ने उन्हां नूं यह बचन समझ आ रहे होणगे कि वह अकाल